मेरी 400 दुकानें चल चुकी हैं यार, कोई जिम्मेदार नहीं है। एक फायर ब्रिगेड नहीं है, आप एक फायर ब्रिगेड दिखा दो, मेरी दुकान चल गई, कोई देखने वाला नहीं है।
दिवालिया हो गया, एक छोटा दुकान से लेकर एक बड़ा होलसेलर तक
सब कुछ खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। देखे ना अंदर आपको, नथिंग।
पाकिस्तान की 63 साल तारीख में इतना बड़ा नुकसान ताजिरों का नहीं हुआ।
केमिकल है इसके अंदर सारा, फिर इसमें परफ्यूम है, इसमें कॉस्मेटिक्स का सब जो है वो जलने वाले मटेरियल, प्लास्टिक है उधर पीछे, वो सब जलने वाले मटेरियल है। एक दफा उसमें आग लग जाए तो वो जली रही है सारी।
ये कोई सोची समझी स्कीम का एक मुझे प्लान लगता है।
ناظرین السلام علیکم، پروگرام جستجو کیا ہے، میں زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین 10 محرم کو کراچی میں متعدد لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، ان کو شہید کر دیا گیا، بے گناہ لوگ مارے گئے۔ نہ صرف اس دہشت گردی میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا بلکہ مال اور جائیداد کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا، بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان کا کیا کام ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انتظامی طور پر اور حکومتی سطح پر ہم سے کہاں غلطی ہوئی کہ ہم اسے روکنے میں ناکام رہے۔ اس چیز پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مولانا حسن ظفر نقوی صاحب، علامہ صاحب رہنما ہیں مجلس وحدت مسلمین کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سراج قاسم تیلی صاحب، تیلی صاحب بزنس مین گروپ کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب انجم نثار صاحب، انجم نثار صاحب سابق صدر ہیں چیمبر آف کامرس کراچی کے۔ میں ان تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ علامہ صاحب، آپ چونکہ اس واقعے کے عینی گواہ بھی ہیں، وہاں پر آپ موجود بھی تھے، سب سے پہلے مختصراً یہ بتائیے اس پورے واقعے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زبیر احمد صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ ان لوگوں میں ہیں کہ جو اس پاکستان میں جو بحران، جو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، کراچی سے پشاور تک، آپ کا چینل پانی چھڑکنے کا کام انجام دے رہا ہے، تیل چھڑکنے کا نہیں۔ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ ذمہ داروں کا تو انشاءاللہ نقاب ہم اتار ہی دیں گے، اتر ہی جائے گی۔ اگر آپ مجھے 3-4 منٹ کی اجازت دے دیں تو میں ایک پیغام بھی دے دوں اور آپ کو خلاصہ بھی بتا دوں کہانی کا، کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے اپنے اہل پاکستان سے، میں بھی جذبات سے بھرا ہوا ہوں۔ 46 لاشیں اٹھانا، بچوں اور تو بچوں کے، انسانی جان کی قیمت کوئی معمولی نہیں۔ لیکن میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اس جذبات میں بھی میں جانتا ہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے اور یہ ملک اپنے تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ اپیل میں کر رہا ہوں اپنے سیاسی تمام لیڈروں سے، مذہبی لیڈروں سے، کہ خدا کے لیے، تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی اگر اس ملک کو کوئی نقصان پہنچ گیا۔ تاریخ کسی غدار کو، کسی خیانتکار کو، کسی فتنہ و فساد پھیلانے والے کو، اور جو تیل چھڑکتے ہیں جب آگ لگتی ہے، معاف نہیں کرے گی۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں جو عرض کیا آپ سے، 3-4 منٹ میں آپ کے لوں گا، پھر آپ بے شک مجھے بولنے ہی نہیں دیجیے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم وہاں پر ہیں، 4:13 پر بلاسٹ ہوا لائٹ ہاؤس پہ، پوری دنیا دکھا رہی ہے، آپ بھی ویژل دکھا رہے ہیں، 4:13 پہ بلاسٹ ہوا ہے فرنٹ پہ، جہاں جلوس آگے ہے، دکھا دیجئے دوبارہ۔ ایک جگہ کی ویژل مسلسل لائٹ ہاؤس کی دکھائی جا رہی ہے، اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ جلوس کہاں بیٹھا ہے، وہاں سے لے کے پیچھے نمائش تک جلوس ہے، ٹھیک ہے نا، لاکھوں آدمی ہیں۔ جلوس جہاں بلاسٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جلوس ہے، وہاں جامع کلاتھ مارکیٹ ہے، वहाँ ईदगाह की लात मार्केट है, वहाँ रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है तिब्बत सेंटर प्लाजा, जुलूस जहाँ पर मौजूद है वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर मौजूद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार मौजूद है, जुलूस का आखिरी सिरा जहाँ मौजूद है वो है नुमाइश, नुमाइश से लेकर वहाँ तक सिनेमा, प्लाजे, अस्पताल, पेट्रोल पंप और हजारों, ये जो कराची के लोग हैं वो समझते हैं मेरे साथ जुड़े,
पूरा रूट बिल्कुल समझ में आ रहा है।
मेरा साहिबान इंसाफ से मैं ये तकाजा करूंगा जो चैनल्स पे भी तज्जिये निगार बैठे हैं और जो लीडरान और रहबरान कौम बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर ये जुलूस में ये सब कुछ होता और जुलूस वाले ये सब करते तो लाइट हाउस में जब ब्लास्ट हुआ है पूरा बाजार पूरी मार्केटें पीछे हैं, ये आजादार अगर कर रहे होते, ये मातम करने वाले जो अपने आप को अपना सीना अपना मातम कर रहे हैं जिनके पास जंजीर के सिवा कुछ नहीं है और आप विजुअल देख रहे हैं सिर्फ एक जगह के, ये एक डेंसो हॉल से लेकर बोल्टन मार्केट तक क्या यहीं पे सारा जुलूस था? जुलूस चलता रहा, हमने जुलूस रुकने नहीं दिया, लाशों पर से हमारे लोग जुलूस लेकर गए, एक बात। दूसरी बात, ये विजुअल दिखाई जा रही है बोल्टन मार्केट की आग लगने की विजन अभी तक नहीं दिखाई गई है, जो प्लास्टिक की मार्केट मेरे ताजिर भाइयों का अरबों का नुकसान हुआ है
जी, वो
हमारे साथ वो मैं बात, लेकिन मैं जुल्म बता रहा हूं कि हम पर जुल्म क्या हुआ है, यानी हमें 60 साल से यहां से जुलूस गुजर रहा है, यही ताजिर बिरादरी न्याज बांटती है, यही ताजिर बिरादरी सबीले लगाती है हमारे लिए, 2002 में कोयटा में आशूर के दिन जुलूस में 60 मोमिनीन शहीद किए गए, इसी बोल्टन मार्केट पे धरना दिया है, मैं बैठा हूं धरने में 6 घंटे, इसी मार्केट की फुटपाथों पे सीढ़ियों पे 1 लाख आदमी जुलूस का बैठा रहा, यही लोग दुकानों के और फिर दुकानें तो बनती फ्लैटों के लोग अहले सुन्नत भाई हमारे हमें पानी ला के दे रहे, न्याज ला के दे रहे, हम धरना दिए बैठे, हमारा रूट है, हमें चारा बनाया गया ताकि पूरा इल्जाम इनके ऊपर डाल दिया जाए। मैं कहता हूं कि 12 कैमरों की विजुअल दिखाओ, 4 बजे से लेके 8 बजे तक बोल्टन मार्केट के सामने जो कैमरा है, बोल्टन मार्केट कैसे जली दुनिया को बताओ किसने जलाई।
इस पर तो जाहिर है हम भी बात करेंगे कि ये तो
मैं बस ये इंसाफ चाहता हूं कि इस तरह से नहीं किसी को कॉर्नर किया जाए, आइसोलेट करने की कोशिश ना की जाए कि मौका अच्छा है और फौरन ही कुछ लोग एलिमेंट निकले, उन्हीं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, फौरन के जुलूस बंद कर दिए हैं। मैं ये पूछता हूं कि ये जुलूस बंद और करने की बातें कौन कर रहा है जो रोज पूरे पाकिस्तान में रैलियां उठाते हैं, सड़कें बंद करते हैं, मुजाहरे करते हैं।
मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ब्रेक पे मुझे जाना है। नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, अल्लामा साहब ने जो भी खदशात जाहिर किए उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले हम अल्लामा साहब से बात कर रहे थे, मैं तेली साहब से अब गुफ्तगू करता हूँ। तेली साहब, ज़रा ये बताइए, 2-3 बातें पहले मैं ज़रा आपसे पूछ लूँ कि ज़ाहिर ताजिर बरादरी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हुकूमत से आपकी नेगोशिएशन चल रही है, अंदाजन कितना नुकसान हुआ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ुबैर साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया का आपने बुलाया। मैं एक सेकेंड ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ तक बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का ताल्लुक है कराची का, हम ये डिमांड कर चुके हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि जो भी वाकया हुआ है, जाहिर है बम ब्लास्ट करने वाले जो भी थे और जो इन्होंने आगे लगाई हैं, जिस लोगों ने टीवी पे नज़र आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको पकड़ा भी जाए और बेनकाब भी किया जाए और पब्लिकली टीवी पे दिखाया जाए कि कौन लोग हैं और किसके लोग हैं, इरेस्पेक्टिव कि वो किसी के
हो,
चाहे रूलिंग ग्रुपों में से हो, चाहे नॉन रूलिंग के हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कोई भी हो, गलत क्रिमिनल है वो किधर भी हो। और रहमान मलिक ने और प्रेसिडेंट साहब ने, गवर्नर साहब ने, चीफ मिनिस्टर सब ने ये मुझसे वादा किया है कि 8-10 दिन के अंदर अंदर ये बेनकाबी करेंगे और पब्लिक करेंगे। इसलिए कि ये रिपीट हुआ है, मोहतरमा शहीद के टाइम पे हुआ था और इससे पहले भी 2 दफ़ा हुआ है, और ये ऐसे लोग कोई मौजूद हैं शहर में जो मौके का फ़ायदा उठा के अफरा तफरी फैलाते हैं और नुकसान करते हैं। तो ये तो बात लॉ एंड ऑर्डर की हद तक है, और انشاءاللہ تعالی ہم جب تک بات یہ کرتے رہیں گے جب تک یہ پبلک نہیں کریں گے.
اچھا تاجر برادری نے کوئی ایسا وہ کیا ہے مطالبہ کہ جی اب جلوس یہاں سے نہیں گزرنا چاہیے یا روٹ اس کا تبدیل ہونا چاہیے؟
دیکھیں یہ ہم نے کوئی بات تاجر برادری نے پرٹیکولرلی کوئی نہیں کی. اور مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ دیکھیں نا آپ اس کی جڑ کو پکڑیں, کرنے والوں کو تو پکڑے. میں نے تو یہاں تک ضرور کہا ہے اور کبھی کبھی لوگوں کو برا لگتا ہے کہ اس شہر میں کوئلیشن حکومت ہے, تین پارٹیاں جو کوئلیشن میں ہیں وہ تین پارٹیاں اور ایک کا چھوٹی موٹی دوسری جماعتوں کو چھوڑ کے, بلکہ یہ تین پارٹیوں کو دیکھا جائے تو 80-90% ووٹ بینک ان تین پارٹیوں کا ہے. اور میں نہیں سمجھتا یہ کوئلیشن اگر ایمانداری سے ساتھ صحیح معنوں میں بیٹھ کے کام کر لے, مجال نہیں ہے کہ یہاں کوا پر مر جائے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا پاکستان میں.
لیکن کتنے ارب کا لاس ہوا ہے تیلی صاحب؟
میں آ رہا ہوں اس پہ. اچھا جہاں تک لاس کا تعلق ہے, دیکھیں میں نے ٹی وی پہ بھی سنا ہے, باتوں میں بھی سنتا ہوں, لوگ 2-4 ارب سے لے کے 50 ارب کی تک باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ سارا فگر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. صحیح فگر میں سمجھتا ہوں 8-10 دن میں ہم آپ کو دیں گے.
اچھا.
اور وہ فگر ایسا ہوگا, وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا.
یعنی آپ ایویلیویشن کر رہے ہیں ابھی؟
اس وقت ہم نے ایک فارمیٹ بنا لیا تھا, وہ فارمیٹ کے اوپر فارم بھرے جا رہے ہیں اور 450-500 کے قریب فارم چیمبر میں آ چکے ہیں آلریڈی. ہر آدمی اپنا نقصان بتا رہا ہے اور پرابلم بتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اربوں میں ہے ڈیفینیٹلی, مگر کتنے ارب ہے, 3 ہے 4 ہے,
ابھی مراحل مطلب کمپلیٹ نہیں ہوئے. اپنا صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ گورنمنٹ سے ظاہر ہے نیگوسیشن میں آپ بھی انوالو ہیں, تیلی صاحب بھی انوالو ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, تو کیا گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی, یعنی جس طرح باتیں کر رہے ہیں, کیا ابھی تک واقعی کچھ دیا ہے, فنڈ آیا ہے آپ کے پاس یا نہیں آیا؟
دیکھیں جی میں بتاؤں, جس دن یہ واقعہ ہوا تو اسی رات کو تقریباً میں نے 11:30 بجے میں نے رحمان ملک صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا کہ آپ کو اس وقت کراچی آنا چاہیے. تو وہ صبح ہی کراچی تشریف لائے اور پھر سیاج بھائی اور میں مل کے ان کو گورنر ہاؤس میں ملے اور پھر وہیں سے لے کے ہم کراچی چیمبر چلے گئے. وہاں پہ انہوں نے فوری طور پہ 100 کروڑ کا اناؤنس کیا 1 ارب کا, جو ہم سمجھتے ہیں بالکل ناکافی تھا. اس کے بعد ہم پریزیڈنٹ صاحب سے ملے دوسرے دن ہی. پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ریکویسٹ تھی کہ اس میں ہمیں فنڈ زیادہ دیا جائے چونکہ نقصان بہت زیادہ اربوں میں ہے. تو ہم نے 3 ارب کی وہاں پہ ڈیمانڈ کی, جو شوکت تعین صاحب نے چونکہ اس دن گوادر کیبنٹ کی ایک میٹنگ تھی, جب شوکت تعین صاحب کل پہنچے تو ہمیں کل شوکت تعین صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے پرسوں شام کو تقریباً 3 ارب کا ٹوٹل ہمیں دیا, جو کل وہ کہہ رہے تھے کہ شاید منڈے کو, چونکہ آج اتوار ہے, وہ اکاؤنٹ چونکہ چیف منسٹر ہاؤس میں کھلنا تھا اکاؤنٹ کھل گیا. تو کل ہماری امید انہیں یقین دھیانی گئی کہ کل شام سے پہلے پہلے یہ 300 کروڑ اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور جس میں 50 کروڑ پروینشل گورنمنٹ کے بھی ہیں. تو یہ تقریباً 350 کروڑ ہمیں امید ہے کل تک ہمیں.
یہ کس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے جی؟
یہ ایک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے چیف منسٹر کے, جی سر
منسٹر, یہ ایمرجنسی روڈ ریلیف فنڈ ہے.
ٹھیک ہے, اس میں یہ آئے گا. اس کے سگنیٹری کون ہوں گے چیک کے اوپر؟
3 سگنیٹری ہے
جی,
ایک زبیر موتی والا ہے
جی,
چیمبر کی طرف سے ہم نے اسے نومینیٹ کیا ہے,
زبیر موتی والا صاحب.
زبیر موتی والا صاحب ہے, ڈی سی او جاوید انیف ہے, اور ایک نومینی ہوگا فیڈرل فائنانس منسٹری کا, جو فائنانس کا ہوگا.
تو یعنی آپ پھر جس بھی تاجر کو آپ انڈیکیٹ کریں گے کہ ان کا اتنا لاس ہے, ان کو کیش دیا جائے گا, کیا ہوگا؟
میں اگر آپ اجازت دو تو میں تھوڑا سا شارٹ میں آپ کو سمجھا دوں.
جی,
فارمز بھر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. اب ہم یہ کریں گے ایک سیکنڈ اسٹیج میں کہ ٹیوزڈے یا وینسڈے میں ایک میٹنگ کریں گے, ان ساری مارکیٹوں کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں, ان کے نمائندوں کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں, ان سب کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ایک ماڈس اوپرنڈی بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی مارکیٹ وائز یہ کمیٹی بیٹھ کے ان فارموں کو لے کے, جیسے ایک جیسے مثال کے طور پر بولڈر مارکیٹ لے لیں یا آپ لنڈا بازار لے لیں. اب لنڈا بازار کے جمعہ خان ہیں جو ان کے ریپرزینٹیو ہیں, انہوں نے اس لائن کے 126 دکانوں کے فارم 126 جمع کرا دیے چیمبر میں. اب وہ 126 فارم کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھ کے جمعہ خان کے ساتھ اسسمنٹ کو ویریفائی کرے گی. دوسرے 4-6-8-10 طریقے ہم نے بنائے کہ نیئرسٹ کس طرح پتا چلے ہمیں ایگزیکٹ, اور اس حساب سے ہی اپروو کرے گی.
ٹھیک ہے تیلی صاحب, اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ناظرین علامہ نادر عباس صاحب موجود ہیں جو سیکرٹری ہیں جنرل شیعہ علماء کونسل کے, ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب.
وعلیکم السلام.
علامہ صاحب یہ جو واقعہ ہوا, آپ اس بارے میں ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ حکومت کے جو کام تھا یا انتظامی معاملات تھے اس میں ڈیلے ہوا, یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہاں پولیس یا رینجرز نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا, اس پورے سیناریو کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ موقع دیا کہ لوگوں کے سامنے اصل حقائق کھلایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے پاکستان کے بدترین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے, اور اس میں نہ صرف شیعہ بلکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں, جتنے مذاہب کے لوگ ہیں, سب کے دل متاثر ہوئے اور سب جو ہے اس حالت میں غمگین ہے اس واقعے کے اوپر. جہاں تک بات یہ رہی بات کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا, اس کے بہت سارے اسباب ہیں, نہ یہ پہلا واقعہ اور نہ میں سمجھتا ہوں آخری واقعہ ہے یہ.
نہیں میں علامہ صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیوں رونما ہوا یا نہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ واقعہ جب رونما ہو رہا تھا اس وقت ظاہر حکومت کی طرف سے مختلف ڈیلیز آئے, فائر بریگیڈ آنے میں ڈیلے ہوا, فوج نے رینجرز نے اور پولیس نے بھی مداخلت نہیں کی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں
جی,
یہ جو جہاں تک انتظامیہ کا معاملات ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے, جان و مال کا لوگوں کی تحفظ کرنا. میں واقعے کے 20 منٹ بعد اس جگہ پر موجود تھا اور میں نے خود یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیا, جہاں بم دھماکہ ہوا تھا وہاں پر بھی گیا, اور اس کے بعد جہاں یہ بولڈر مارکیٹ کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا وہاں پولیس نے فائرنگ بھی کی, پولیس نے شیلنگ بھی کی. میں نے انتظامیہ سے جا کے بات کی کہ جلوس کو اس راستے سے مڑنا ہے, آپ یہ ساری شیلنگ بند کیجئے, آپ کی وجہ سے جلوس میں اشتعال پھیلے گا, یہ صورتحال. پھر انہوں نے میری بات کو مانا اور انہوں نے شیلنگ بند کی. اس کے بعد میں نے جا کے وہاں پولیس کی انتظامیہ سے کہا کہ آپ فائر بریگیڈ منگائیے, صورتحال بہت خراب ہے. کچھ تاجر برادری بھی وہاں موجود تھے, وہ بھی مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے, میں ان کے سامنے التماس کر رہا تھا ان لوگوں سے کہ آپ فائر بریگیڈ منگائیے, لیکن کوئی فائر بریگیڈ منگانے کے لیے تیار نہیں تھا. سب کہہ رہے تھے ہم نے رابطے کیے, ہم نے بات چیت کیے, یہ کیے. وہ جو ایک فوٹیج دکھائی گئی ہے فائر بریگیڈ کی, وہ فائر بریگیڈ بھی ہم نے منگائی, میں کھڑا تھا وہاں پہ, اور وہ جو دکھا رہے ہیں کہ لوگ اس کو گھیرے میں لے رہے ہیں, وہ اس کو توڑنے یا نقصان پہنچانے کے لیے گھیرے میں لے رہے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں گے اس کے بونٹ کے اوپر جو ہے ایک اسکاؤٹ کا بندہ بھی کھڑا ہوا ہے, اور زیادہ کلوز کریں گے تو ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کو حصار میں لے کر خود میں گیا ہوں آگے بیٹھ کر اپنا کہتے ہیں اس مارکیٹ کو آگ بجھانے کے لیے. وہ واحد گاڑی ہے جو پہنچی ہے, اس میں بھی میرے خیال میں پانی اتنا نہیں تھا کہ وہ آگ پوری بجھا سکے. اس کے بعد کوئی گاڑی وہاں پر نہیں پہنچی. میں انتظامیہ سے کہتا رہا لیکن انتظامیہ ایک دوسرے پر ٹالتی رہی کہ وہ آپ منگا رہے ہیں یہ منگا رہے ہیں, لیکن تاحال جب تک پولیس نے وہاں پر جو ہے اپنی کاروائی شروع کی اس وقت تک کوئی گاڑی نہیں آئی تھی. 2-3 گھنٹے میں وہاں کھڑا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے, اور انتظامیہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس رخ کو موڑ رہی ہے. میں اب بھی حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں, سٹی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اصل حقائق کو سامنے لے کے آئے.
ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے علامہ صاحب سے, علامہ نادر عباس صاحب سے. سر آپ کی طرف میں آؤں گا, یہ آپ تو اس جلوس میں شامل تھے اور جب یہ بام بلاسٹ ہوا اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جلوس کو لے کر مسلسل آگے بڑھتے رہے. آپ جب آگے بڑھے, ظاہر ہے آپ وہاں بولٹن مارکیٹ سے بھی گزرے ہوں گے, وہاں پر آپ کے سامنے کوئی یہ جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, آپ نے کچھ دیکھا ہے وہاں پر؟
دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, ایک ہوتا ہے جیسے ہنگامے ہوتے ہیں نا, نارمل گھراؤ جلاؤ, نیچے سے آگ لگتی ہے, دکانوں میں لگ گئی. میں بولٹن مارکیٹ سے پہلا دستہ لے کے مڑا ہوں کھارا در میں, مجھے مجلس پڑھنا ہے بڑا امام باڑہ میں.
ٹھیک ہے,
بولٹن مارکیٹ پہ کچھ بھی نہیں, جب پہلا دستہ مڑ گیا.
نہیں میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا, جب بام بلاسٹ ہوا اس کے بعد بولٹن مارکیٹ میں کتنی دیر تک اندازہ پہنچوں گے؟ آدھا ایک گھنٹہ لگا ہوگا.
مجھے یوں سمجھ لیجیے کہ میں بولٹن مارکیٹ پہنچا ہوں کہ یعنی جو جس وقت ہم نے پہلا دستہ اپنا ادھر سے داخل کیا ہے, جب میں اندر جا چکا تھا, جب مجھے پتا چلا کہ بولٹن مارکیٹ میں آگ لگنا شروع ہوئی ہے, اس وقت بجے تھے 6, اذان ہونے والی تھی.
اچھا,
یعنی میں پہنچ چکا تھا بڑا امام باڑہ کھارا در, پیچھے یہ جلوس آ رہا تھا, کیونکہ ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ جلوس ڈسٹرب نہ ہو اور فساد پھیلے گا, جلوس جو ہے وہ چلتا چلا جائے, آگے بڑھتا چلا جائے. جیسے بھی ناظر عباس,
آپ کے سامنے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں
ہوا؟ یعنی وہ پتھراؤ وتھراؤ تھوڑا ہوا, لیکن یہ جو آگ لگی نا, میں اسی پہ حیران ہوا, جب میں بڑا امام باڑہ کھارا در پہنچا ہوں تو مجھے یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہاں پہ یعنی سورج غروب ہو چکا تھا کہ اب آگ لگ رہی ہے, یہاں پہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے. یہ اچانک, اچھا ایک بلڈنگ چھوڑ کے دوسری بلڈنگ چھوڑ کے دوسری. اب آپ دیکھیے, میں ایک ٹیکنیکل چیز آپ کو بتاؤں, میں مولوی ہوں لیکن اتنا میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لیفٹ اور رائٹ, یہ میرے تاجر برادری جن کے یہ ہمارے دکھ میں شریک ہیں, یہ خود یہ گواہی دیں گے
कि लेफ्ट पे कुछ नहीं हो रहा है, लेफ्ट पे सिर्फ दो हादसे हुए, एक बैंक में अटैक हुआ, एक असले की दुकान पे। जब मॉप अगर करता है मुझे
तो लेफ्ट राइट नहीं देखता,
लेफ्ट राइट तो नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है कि सब राइट पे हो रहा है बोल्टर मार्ग? अच्छा लेफ्ट में सब खाली, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और गवाही देंगे बैठे मेरे मेरा
से लेके बोल्टर मार्केट
पूछ लीजिए
आप, ये चीजें कह चुका है
ये कह चुके हैं लोग, यानी जो मेरी बात की गवाही पूरी ताजिर बिरादरी ने दी है कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर मॉप करेगा तो आप खुद सोचिए ना, मॉप तो नहीं दिखेगा कि एक बिल्डिंग छोड़ो एक को जलाओ, एक साइड को छोड़ो दूसरी साइड को जलाओ।
जी, जी, जी।
मेरी गुजारिश यही है कि इस शहर को जो जुलानगाह बनाया है ना, मैदान गाह, कि मुख्तलिफ कुव्वतों की शहर पे कब्जे की लड़ाई हो रही है, इसमें गरीब आवाम, ताजिर, शुहदा, अभी मेरे ताजिर भाइयों ने भी मुझसे बात की और ये इंशाल्लाह अभी इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे कि देखिए वो जो खानवादे तबाह हो गए ना, जो शहीद हो गए, जिनके घर उजड़ गए 46 घर, एक जान की हुरमत की कीमत, पैगंबर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है कि काबे की हुरमत से ज्यादा है एक मुसलमान की जान।
बिल्कुल।
और हम एक की बात तो नहीं कर रहे, देखिए इन शुहदा में 10 हमारे अहले सुन्नत भाई, 2 हमारे बुहरी भाई, 1 मसीही तक शामिल,
टोटल 46 आपने बताया,
46 जो कन्फर्म हुए। अब मुझे आप एक बात बताइए, बिल्कुल इसी तरह ये जो ताजिर बिरादरी का नुकसान हुआ, ये किसका नुकसान है? ये हमारे ही है ना,
हमारा अपना नुकसान।
ताजिर बिरादरी एक कम्युनिटी की तो नहीं है ना, वहां खोजा बिरादरी हो कुछ हो, यानी हम तो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं ना। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये सियासी कुव्वतें जो मक्तल बना रही हैं इस शहर को, अपने अपने कब्जे की लड़ाई जिसको कहते ना कि मेरा कराची के तेरा कराची, ये जो लड़ाई हमारे शहर में हो रही है ना, ये इंतहाई भयानक नतीज होंगे। और ये इतनी बड़ी साजिश थी, मैं अपने बात सुनी उलमा से मेरा रबता रहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी मैं रबते में रहा, जाहिर है कि उस वक्त हमारे भी उनके भी जज्बात का क्या आलम होगा।
बिल्कुल।
लेकिन 24 घंटे के अंदर इस साजिश को उन लोगों ने भी समझा कि ये इस शहर को फिरके वाराना फसाद की आग में झोंकने का बहुत बड़ा गेम खेल।
और ये उलमा को मैं मुबारकबाद दूंगा कि वो इसमें नहीं आए, इस
देखिए आज तक हमने और उन्होंने उनकी तरफ से भी सबने जो भी मीडिया पे आके बात कर रहा है वो इस साजिश को फाश, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई खुफिया ताकतें हैं। और वो जो भी और भी बातें बताएंगे लोग कि इंतजाम 27 दिसंबर को 12 मई को लाइए ना फुटेज सामने, सबके इंक्वायरियां लाइए, सबके सामने लाइए, पता चले ना कि क्या हुआ इस शहर में, क्या कयामत टूट पड़ी, इसमत दरियां हो गई। एक पार्टी को तो ब्लेम नहीं दिया जा सकता 27 दिसंबर का, क्यों? यानी पीछे कोई खुफिया हाथ है जो इंतजार में कि ये शहर में ऐसा माहौल है कि एक जरा सा वाकया हो।
मैं जरा तेली साहब आपकी तरफ आऊंगा। तेली साहब, ये जो अभी आपने जो बात की, लॉस हुआ है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, अच्छा बाज इसमें बिजनेस कम्युनिटी में बाज लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल यानी रोड पर आ गए हैं, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग वहां पर मुलाजिम थे, कम से कम 10-12 हजार मुलाजिम थे, वो अब बेचारे फारिग हो गए। तो कोई शॉर्ट टर्म आपने उन लोगों के लिए कोई किया है काम, या उसमें किस तरह से
जो प्लान है ना, जो मैंने आपको कहा उसमें सारे अल्लाह करेगा तो आएंगे। इसमें हमने ये प्लान किया है कि ये जो मीटिंग करेंगे इसके फौरन बाद एक लमसम शॉर्ट अमाउंट जो असेसमेंट में से एडजस्टमेंट हो जाएगा दे देंगे। इसलिए आपकी बात सही है कि वो 12-15-20 हजार लोग काम करते थे।
बिल्कुल।
जो लोडर था, कोई पियोन था,
कुछ वो था, उनके भी चूल्हे ठंडे हो गए।
वो दुकानदार बताएगा कि मेरे पास क्या थे। हमें तो ये मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंफॉर्मेशन देंगे, देखिए ये जो पैसा है 3.5 अरब रुपए, ये एक अमानत है हमारे पास चैम्बर के थ्रू।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आप उनको 10-15 लाख रुपए दे देंगे ताकि वो
कुछ ना कुछ किया जाएगा, असेसमेंट के साथ हो जाएगा। एक बात जो समझने की है ये है कि इसमें ये लोग जो अफेक्टेड हैं, इनके बगैर ये हो नहीं सकता, और वो पार्टिसिपेट करेंगे। हमने एक सिस्टम बनाई है और उस पार्टिसिपेशन में बहुत सी किस्में हैं। आप तो सिर्फ एक दो बात कर रहे हो ना। कल मुझे एक बंदा ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे एक ठिया था एक दुकान के आगे, एक साइड कर बना, मेरी तो कोई दुकान नहीं थी, मैं वहाँ बैठ के काम करता था, मैं क्या करूँगा? और वो दुकानदार जो
बहुत सारे होंगे
फार्म, वो दुकानदार भरेगा, मेरा क्या? मैंने बोला तू भी फार्म भर, तू भी उसी दुकान का नंबर डाल और उसमें डिटेल दे, और वो दुकान या आसपास वाले ये कंफर्म करेंगे कि भाई ये इधर बैठा है 10 साल से 5 साल से, हमसे तो देखो हमारा मकसद क्या है।
ठीक है, समझ गया।
चैम्बर का तो सिर्फ सिंपल एक मकसद है कि गवर्नमेंट से पैसे किसी तरह
पैसे लेकर आपको डिस्पर्स
और सही ईमानदारी से मैक्सिमम पॉसिबल उन विक्टिम्स को पहुंच जाए, ये हमारा काम है।
अच्छा अंजुम साहब, ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो हुकूमत ने और शहरी हुकूमत ने फेडरल लेवल पर भी शहरी हुकूमत ने जो भी काम किया है, आप उससे सेटिस्फाई हैं इस वक्त जो आप
देखें? जहाँ देखें, जहाँ बिजनेस कमेटी के इश्यूज पे हम तनकीद करते हैं गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ इस साल हमें वाकई इस मौके पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि तीन चार दिनों में ये पैसा ट्रांसफर होने जा रहा है। सिटी गवर्नमेंट ने, आपने देखा हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जो डैमेज बोल्डर मार्केट को। असल देखें जुबैर भाई, प्रॉब्लम ये क्या था, ये इसको जो बिल्कुल मौलाना साहब ने, मैं समझता हूँ, काफ़ी सही फरमाया कि पहले इस वाक़े को एक मजहबी अंग देने की कोशिश की, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो उसके बाद जब ये इस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो वो लाइट हाउस देखें, अगर लाइट हाउस को अगर तजिया करें तो ज़्यादातर पख्तून आबादी को 95-100%
लंडा बाजार है
वो सारी जला दी गई, फिर मैसेज दिए गए तो वो उस तरह से पैनिक फैला, लेकिन उसमें कामयाब ना हुए तो फिर 300 डिफरेंट मकाम पर आग लगाई गई। एक तरह से पाकिस्तान को फिर माशी नुकसान, एक कतल, मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान का 9/11 है जिस तरह अमेरिका में हुआ। तो चूंकि 62 साल हिस्ट्री में अगर आप देखें, जो बेनजीर मोहतमा शहीद हुई थी उसको यदि कोई तजिया था कि 5 से 10 अरब का नुकसान हुआ है, ये नुकसान कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये कोई कराची की होलसेल मार्केट नहीं थी और एक या दो होलसेल मार्केटें नहीं थी, ये कोई
सच्चा। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है, एक थ्योरी ये है कि इससे पहले, इस वाक़े से पहले ताजिर बिरादरी को ये कहा जा रहा था कि आप अपनी सारी दुकानें यहाँ से शिफ्ट कर दें, यहाँ से अब शिफ्ट होके उधर जानी है, और इस वजह से आग लगाई गई है, ये भी है कोई
बात? मैं ये बताऊँ आपको, ये अब किसी की जुहाइश हो सकता है, ऐसी कोई बात हमारे सामने उसकी वजूहत हैं। अच्छा। जो हमारे पास अब इन्फॉर्मेशन आ गई है, और सर आपने बिल्कुल सही कहा है, ये तमाम मार्केट के स्टेक होल्डर्स इसमें जो 6 महीने मुतलक है वो आ गए, कोई पगड़ी पे थी, कोई किराए पे थी, कोई ठिया था और कोई ऑनरशिप थी, कोई केसेस कोर्ट पर भी चल रहे थे। और ये इसी बात को मद्देनजर जब सियाज भाई ने प्रेसिडेंट साहब से और रहमान मलिक साहब से बात की, तो वो उन्होंने वहीं पे ऐलान किया चैम्बर में कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या आगे बचाने के लिए, बेहतरी के लिए स्टेटस को कायम रखा जाएगा। स्टेटस को का मतलब ये हुआ, अगर जो बंदा किराए पे था वो किराए पे ही उसको वापस बिठाया जाएगा, जो ठिए पे था वो ठिए पे बैठेगा, जो पगड़ी सिस्टम पे था पगड़ी पे बैठेगा, और जो मालिक था वो मालिक की
स्टेटस
को ऐसे कैसे रखा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये था ताकि आगे हम लिटिगेशन न जाए। एक हमने वो तजवीज़ ये भी थी कि वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर, अगर वो लोग चाहें, कोई चैम्बर नहीं चाहेगी, हम नहीं चाहते, अगर वो लोग चाहें तो टेम्परेरी तौर पर रेलवे ग्राउंड या ऐसी जगह पर, ताकि उनका बिजनेस टाइम फैक्टर, क्योंकि ये एक दो आदमी नहीं या 200-400 आदमी नहीं, ये 4,000 के करीब दुकानें हैं, और एवरेज अगर आप 5 बंदे भी लेते हैं एक दुकान पर काम करते हो, किसी का 20 और किसी का 2, तो ये 20,000 आदमी, और जो पाकिस्तान का अगर एवरेज हाउस फैम साइज लेते हैं तो 5 का है, यानी 20,000 का मतलब है 1,00,000 आदमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासिर हुए हैं।
अल्लामा साहब, मैं जरा ये भी जानना चाहूँ, अभी आप देखें कि खुदकश कार्रवाई जो हुई है ना, ये खाली कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान, अभी पिछले दिनों लकी मरवत में ये जो बात हुआ है, एक मैच के दौरान जो है खुदकश हमला हुआ, तो ये पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में है, खाली कराची नहीं है, तो ये क्या फिरका वाराना तो मसला जाहिर नहीं है? अगर खाली कराची होता तो हम कहते हैं।
मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इसी चीज ने फिरके वाराना फसाद को रोका है। और एक मैं जरा सी माजरत के साथ इसलाह कर दूं आपकी, कि मैं पहला आदमी हूं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 11 बजे करके ये कहा था कि ये सुसाइड ब्लास्ट नहीं है, है ना। हमारे एक स्काउट मुजम्मिल शाह, जिसके अपने 4 और अफराद चकवाल के, 5 अफराद ये शहीद हुए, हमारे एक बड़े यहाँ के जेम्स बॉन्ड हैं, उन्हीं ने फौरन सिविल हॉस्पिटल में जाके तस्वीरें ली और चैनल्स को भी दे दी कि खुद कुछ बम्बार का सर भी मिल गया।
अल्लामा साहब, थोड़ा सा इंटरप्ट ब्रेक से वापस आकर आपसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अल्लामा साहब से बात जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, अल्लामा साहब से गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले। जी अल्लामा साहब,
जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपके मीडिया पे भी उसके मौजूद हो गए रिकॉर्ड, मैंने ये बात कही थी कि ये खुदकुश धमाका नहीं है और ये इसको खुदकुश बनाएंगे। और वो हमारे एक जेम्स बॉन्ड हैं यहाँ के पुलिस अफसर, उन्हीं ने फौरन सिविल हॉस्पिटल पहुँच के, वो स्काउट मुजम्मिल शाह जिसके घर के 4 और अफराद भी शहीद हुए, फौरन तस्वीर ली, आधे घंटे बाद उन्होंने जारी कर दिया, चैनल्स को दे दिया,
ये खुदकुश बम,
ये खुदकुश। दूसरे दिन, अब आप देखिए, सच साच को आँच नहीं कहते ना, कि जो सच है मजलूम की आवाज़ कभी नहीं दबती। कल तक सबके बयान देख लीजिए, DIG साउथ कह रहे हैं कि ये सुसाइड बम नहीं है, CCPO ने ऐलान कर दिया कि जी अभी हमें पता ही नहीं चला क्या है, IG बाबर खटक साहब का कल बयान, परसों TV पे चल गया, कल सारे अखबारात में आ गया कि ये सुसाइड बम्बर सुसाइड हमला नहीं था, और आज आप देखिए आपकी ने एक्सक्लूसिव चला दिया, चैनल पे चल गया कि क्या था, यानी ये चाह रहे थे कि बस अपनी बला टाल दो किसी को भी। वो तो शुक्र है कि वारिस भी मौजूद थे उसके और शहीद भी मौजूद थे, हमारे अपने स्काउट को उन्होंने खुद कुछ बम्बार बना के, ये इनकी मैं आपको बता रहा हूँ कारकर्दगी। और मैं एक और कारकर्दगी बताऊँ, 8 बहुत मुख्तसर सा बता रहा हूँ ताकि मेरे नाजरीन को हकायक पता चले कि क्या है। 8 मुहर्रम को पहला ब्लास्ट होता है खिलाफत चौक, खिलाफत चौक पापोश नगर पे, फौरन बयान आ जाता है हमारे जिम्मेदार अफराद का। ये मैं बता रहा हूँ कि इनकी इफिशियंसी आप देखिए, कहते हैं कि सिलेंडर फट गया कार का, सिलेंडर कार आगे से तबाह हुई हुई है, उसको उनको ये नहीं पता कि सिलेंडर कार में पीछे होता है कि आगे होता है। अच्छा, वो उन्हीं ने टाल दिया कि सिलेंडर फटा है। दूसरे दिन कस्बा में ब्लास्ट होता है, कहते हैं वो नीचे गटर में गैस फट गई है, गैस जमा हो गई थी वो, यानी मजाक कर रहे हो कौम के साथ। इतनी बड़ी बड़ी इनकी पोस्टें हैं तो पूरी, और फिर आज सब मुकर गए, सब कहने के नहीं था। तो अब पहले इतनी जल्दी फटाफट फौरन बयान दे के आप क्यों कौम को बेवकूफ बनाते हो, गलत फहमियां पैदा करते हो। मैं फिर कह रहा हूं कि खुदा का कोई खास करम हुआ है कि ये जितने बड़े फसाद की कोशिश की गई थी कुछ नहीं हुआ, वरना तो इन्होंने पूरा तय कर दिया था कि पूरे शहर को जो है वो तहस नहस कर दें और फिरके वाराना फसाद के, और जिस तरफ हमारे काजिर भाइयों ने किया। अच्छा। और मैं एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा बहुत माजरत के साथ कि सब बातें हो रही हैं, हुकूमत ने पहले दिन ऐलान किया था शुहदा को कंपलसेशन 5-5 लाख देने का, और शहीद
वो अभी तक नहीं हुआ,
अभी तक उस पर कोई बात ही नहीं कर,
प्रोग्रेस भी नहीं हुई है। जी तेली साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, देखें ये जो लॉस हुआ है, माल का जो लॉस हुआ सारा बना दी, वो तो हुआ, उसके बाद अब हड़तालों का जो सिलसिला अगर है कि हड़ताल कर दी जाएगी, ये इस मजीद लॉस की तरफ हम नहीं जा रहे फिर?
मैं इस पर आता हूँ, एक बात मौलाना साहब की बात पे मुझे कहने दो अगर आप इजाजत दें।
जी जी,
जहाँ तक बम ब्लास्ट में बेगुनाह लोग मारे गए, चाहे वो शिया थे, सुन्नी थे, कोई भी था, सारे शहर के बासी थे और सारे हमारे भाई थे, लेकिन हम तो पैदा इधर हुए, मरना भी इधर है, और हमने इसकी बड़ी मजम्मत की है, मगर इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, मौलाना साहब मुझे कह रहे थे कि क्योंकि हमारा फोकस जाहिर है कि वो लोगों को बहाल करना है जो जिंदा मर गए, वो इस वक्त मरे हुए हैं, जिंदा है, जिंदा मगर मर गए,
हाँ सही है,
तो हमारा फोकस उधर ज़्यादा है डेफिनेटली, मगर ये नहीं है कि हम इस वाक्य की मजम्मत नहीं करते या इनके इसके ऊपर मजम्मत नहीं की,
नहीं, दुख में बराबर के शरीक है, के दुख में शरीक है,
पूरी ताजिर बिरादरी का शुक्रगुजार हूं कि आपने जिस तरह हमारे साथ दिया।
हमारा दिल दुखता है इसके लिए, मगर इसलिए भी दिल दुखता है कि वो लोग जो आज जिंदा है और जिंदा मरे हुए और उनके लिए कुछ करना हमारे लिए हमारी हमारे ऊपर जवाबदारी है और ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। हम तो ये रोज डरते हैं कि अल्लाह हमें इससे निकाल कर ठीक करा दे। रहा मामला इसका, आप जो कह रहे
हैं
स्ट्राइक हड़तालों का, स्ट्राइक का अनाउंसमेंट सारे रिलीजियस लीडर्स ने किया था, हमने ज़रूर कहा कि ये सही नहीं है और हम आज भी कहते हैं, मगर ये एक जज्बा था, उसमें कोई मसला नहीं था, उसमें सारी पार्टियाँ आ गई, मगर हमारी कोशिश ये होती है और हमारी रिक्वेस्ट आज भी है कि ठीक है, एक तो नुकसान इतना सारा हो गया, इतनी तकलीफ होगी, एहतजाज करना चाहिए, काली पट्टियाँ बांधे, हम कोई और तरीका करें, कोशिश ये करें, एक तो नुकसान पहले ही बहुत हो चुका,
मतलब एहतजाज हो तो पुरमन एहतजाज हो, ये मजीद नुकसान ना हो,
इससे ऐसे तरीके से जिसमें कारोबार या कम अज़ कम प्रोडक्शन ना रुके, जिससे कोई ऐसी चीज ना हो जिससे नुकसान बढ़े।
अंजुम साहब, ये मैं जिस तरह से अब ताजिर बिरादरी जो है उन्होंने जाहिर है कि मुत्तहिदा मिलकर आपस में जो है हुकूमत से आप निगोशिएशन कर रहे हैं, क्या आपका इरादा, अगर हुकूमत आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती तो आपका इरादा उस तरह की जो वकला ने जो तहरीक चलाई थी उस तरह ताजिर बरादरी मिलकर कोई तहरीक वहरीक तो चलाने का इरादा नहीं रखते?
मैं वैसे बता दूं, देखिए कि कोई ऐसा मसला होता, कोई अगर ना होती तो हम हर सतह हर हद तक जाते।
नहीं, मैं एक अंदाजन, मैं सिर्फ आपका सवाल एक्सप्लेन कर दूं, फर्ज कर लीजिए कि इस वक्त तखमीना आपका आता है कि जी 20 अरब का नुकसान हुआ सपोज,
जी जी,
और आपको हुकूमत 5 अरब से ज्यादा नहीं दे रही, तो 15 अरब का जो डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए आपको,
मैं बात को बता दूं, सबसे पहली बात जो जल जमाई शौकत ही साहब से कल बात हुई, कल भी मीटिंग हुई हमारी 2 बजे सब से आज भाई की हमारी लीडरशिप के अंदर, तो वहाँ ये बात तय की थी और मैं 2 चैनल्स पे शौकत ही साहब के साथ कल परसों 2 जगह था और वहाँ उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर की और मीडिया पे बात की है कि ये जो 3 अरब देव हैं ये एज ए स्टार्टर है, स्टार्टर अभी तो स्टार्टर मतलब खाना आना और चाय बाकी, तो हमें बड़ी कभी उन्होंने कहा जितनी जरूरत होगी जितनी तकलीफ होगी जो ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी फाइनल कि ये इतना नुकसान है, वो कोशिश हद तक, अब देखिए 100% तलाफी हो नहीं सकती, 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, 100% आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप काफ़ी हद तक किसी के नुकसान की तलाफी कर सकते हैं और वो मुतमईन हो जाए जो मुतल्लिका लोग हैं मुतासिर के वाकई गवर्नमेंट के, तो मैं समझता हूँ जहाँ सपोर्ट करें। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मैं दोबारा बता दूँ, जहाँ ये जानी नुकसान की बात की है, जहाँ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, गवर्नमेंट पर ट्रस्ट की बड़ी बात होती है, यकीनी हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ माशी नुकसान की बात करेंगे, हर हालत में हर जगह पर हम ये बात भी करेंगे, ये 1.5-2 करोड़ को बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 46 आदमी मतलब है, 225 करोड़ में तो दिया जाना चाहिए और हम इंशाल्लाह कोशिश है, ये भी काफी चंबा कोशिश है कि उन जानी जिनके नुकसानों के घर पे ये पैसा पहुंचाया जाए।
मैं सब जनाब का शुक्रगुजार हूं ताजिर भाई
बैठे हैं, ये जो सारे जो बात वहां होती है ना बड़ी क्लियर बात होती है, ये वहां ये बात होती है सर प्लीज आप, ये हमारा राइट है, बल्कि मैंने ये तक कहा था कि ताजिर भाई इतना जी साहब
ये सारे ऑन बोर्ड है जी। आप ये बेफिक्र है, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मुस्तफा भाई, इवन फारूक सत्तार, एमपीएस, इनके पीपल्स पार्टी वाले सारे हमारे से टच में भी है, सारे ऑन बोर्ड है,
एमके वाले भी।
बल्कि मैं तो ये समझता हूँ, ये शहर बहुत नसीबदारों का शहर है
जी।
इससे कोई भागेगा नहीं, नहीं। एक बात याद रखना, ना हम भागेंगे ना कोई भागेगा, ना कोई पार्टियां भागेंगी ना कोई रिलीजियस, क्यों भागेंगे भाई, और ये मामला ऐसा है कि इसमें अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जहाँ तक इस वाक्य का ताल्लुक है ना, इसमें हम इंशाल्लाह ताला बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से मैं कह सकता हूँ 80-90% लोग मेरे साथ हैं बिजनेस कम्युनिटी के, कि दिस टाइम इट हैज टू कम टू बुक्स।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हसन जफर नकवी साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। जनाब सिराज कासिम तेली साहब, जनाब अंजुम निसार साहब, और नाज़रीन हमारे साथ जो ऑडियो पर थे अल्लामा नादिर अब्बास साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। दो तीन बातें जो सामने आई हैं वो ये कि पहली बात कि हुकूमत को इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए हर चीज़ के अंदर खुद कुछ हमला हो गया, ये नहीं करना चाहिए जब तक कि तहकीकात ना हो जाएं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अल्लामा साहब ने बताई कि ये पूरा का पूरा जुलूस जो था वो नुमाइश तक था, कहीं पर कोई भी इस तरह से मॉब जो है वो अनकंट्रोलेबल नहीं हुआ, कहीं पर कोई इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस वगैरह क्यों जलाई गई, राइट साइड पर क्यों जलाई गई, लेफ्ट पे क्यों नहीं जलाई गई, इसको सोचना हुकूमत का काम है। दूसरी तरफ जो इमारतें जलाई गई उनकी वीडियो फुटेजेस कहां पर हैं वो भी हुकूमत जरा देखे। और एक बात कि जो शहदा इस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं उनकी कंपनसेशन का ऐलान हुकूमत ने किया था, वो अभी तक हो नहीं सका, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना होगा और हुकूमत इसको देखेगी, जायजा लेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।